ऑनलाइन बेटा सब बच्चों को गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सेम टू यू बेटा। थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग। थैंक यू सबको। थैंक यू।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग सेम टू यू बेटा। बहुत बढ़िया।
हैप्पी न्यू ईयर।
एच एन वाई। गुड इवनिंग एच एन वाई। गुड इवनिंग एच एन वाई। हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो बेटा। शुभकामनाएं बेटा तुमको। खाली ना जाए ये साल।
गुड इवनिंग सर। गुड
सेम टू यू बेटा। सेम टू यू। घोड़े पे चढ़ो तुम। सेम टू यू। सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। न्यू ईयर की इस पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। सबका स्वागत है।
कम है ना,
इसको बंद कर दें। ठीक बेटा, आगे आ जाना। आवाज आ रही ना सबको? ठीक है
बेटा, थोड़ा आगे आ जाओ।
आ जा वहाँ। अभी
देख लो मतलब आवाज।
नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं। यथा संभव दूरियां बनाए रखिए। तो चलिए बेटा, सबको शुभकामनाओं सहित ये मान के चला जाए कि इस प्रिजम्पशन पे कि पिछले बार से ये साल और अच्छा रहेगा, ऐसा हम लोग की ह्यूमन मेमोरी, ह्यूमन टेंडेंसी, ऐसा हमारा कल्चर कहता है। और अभी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चों से, जितने थोड़े से आए बच्चे उनसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एग्जाम्स तो चला दो ना सब। तो हम लोग ऐसा डिस्कस ही यही चीज़ कर रहे थे कि न्यू ईयर ठीक ठाक लोगों ने इन्जॉय किया, और कई जगह तो एक आध जगह दरबार में माता वैष्णो देवी का स्टैम्पेड भी हो गया। स्टैम्पेड हुआ, बहुत लोग मरे हैं। मथुरा में भी अंकित सर घूम घाम के उधर से निकले थे तो कहते बहुत भीड़ थी।
मतलब
हाँ
मथुरा,
मतलब हर जगह। हाँ मतलब ठीक है, यानी लोग निकले गए आए हैं, काफ़ी निकले हैं, तो अच्छा माहौल था। तो अब आज साल का एक नया, आज का हम लोग का फर्स्ट डे वर्किंग डे कहा जाए, वैसे तो रोज ही है हम लोग का काम, कुछ ना कुछ करते ही हम लोग। तो आज टुडे इज फोर्थ, राइट, फोर्थ जनवरी 2022 एंड इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, एमपी एलआरसी 1959। शेड्यूल तो ये है कि आईपीसी शुरू होना चाहिए था जैसा हम लोगों ने बताया था, मगर बीच में हम लोगों ने पाउज लिया है, रोका है कुछ दिन की क्लास को। 10 तारीख से स्टार्ट कर देंगे आईपीसी। पाउज इसलिए लिए कि एमपी की चूंकि वैकेंसी आ गई है, तो ये हुआ कि इसी बीच में यूपी का लैंड लॉ हम लोग पढ़े ही हैं, एमपी का बैक टू बैक पढ़ ले, तो प्रिंसिपल्स तो वही है, सेक्शंस चेंज होगा तो समझ में आ जाएगा, और एग्जाम हम सबको देना ही है, जो पास आउट है उनको देना ही है। इस तरह से हम लोग एमपी के लैंड रेवेन्यू कोड का 2 लेक्चर हुआ था, एंड टुडे इज द 3rd लेक्चर ऑफ एमपी एलआरसी लैंड रेवेन्यू कोड। कमेंसमेंट डेट इज 2nd October 1959। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिफिनीशन क्लॉज देखे लैंड, उसमें खूब ढेर सारी डिफिनीशन थी, सर्विस लैंड और वो सब भी देखा हम लोगों ने। डिफिनीशन के बाद आप सबको याद होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कहाँ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एमपी का? प्रिंसिपल सिटीज इन ग्वालियर, वेरी गुड। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्रिंसिपल जज होगा और बाकी 2 आर मोर, ये सेक्शन 3 में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, बियर एक्ट आप सब रखिएगा, आप सब का रिवीजन चल रहा है, मुझे भी बताते चलेगा। आई थिंक 11 में था जो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोगों ने छोटी मोटी चीज़ें देखी थी, उसको हटा दें, अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने दिमाग में रखते हैं तो उसके बाद आता है वही करेक्शन प्रोसीडिंग यानी अपील। अपील था, रिव्यू था 51, उन पे आप देखिएगा रिवीजन होगा, है ना, ये सब हम लोगों ने सब देखा। उसके बाद लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड चीजें देखा। फिर आगे हम लोग आए थे तो 100 पार किए थे, तो उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मिली थी, जैसे कि 108 में लैंड रिकॉर्ड वगैरह था, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। आगे भू अभिलेख था, म्यूटेशन था 110 में, भू अभिलेख 114A में रहा होगा या कुछ इसी तरह था, 108 में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स था। तो ये सब हम लोगों ने टिक किया था, और एक याद रखने के लिए एक शॉर्ट में कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इतना ढेर सारा सेक्शन, इतनी ढेर सारी बेयर एक्ट, सब याद करना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट में ट्रिक्स, मेमोरीज हमें बैठाना, वो सबका अपना प्राइवेट होगा, वो कॉमन नहीं हो सकता है, तो वो सब आप लोग बनाइएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में केवल एक ही होता है भूस्वामी, उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने 3-4 तरह के देखे। मध्य प्रदेश में लिखा है कि जो टीनियर होल्डर होगा वो एक ही होगा, उसका नाम होगा भूस्वामी। 158 में था ना, भूस्वामी था। फिर भूस्वामी का हम लोगों ने राइट देखा, तो उसमें कई राइट्स थे, और हम लोग जिस पे लास्ट किए थे, जिस पे हम लोग स्टिक हो गए थे, वो 165 था मुझे लग रहा है। ढेर सारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट्स भी हैं, जैसे राइट टू ट्रांसफर है, राइट टू मॉर्गेज है। हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पजिश्री मॉर्गेज भी दिया जा सकता है, बस शर्त ये है कि एक तो ईयर से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, और दूसरा होल्डिंग से, कि एक पर्टिकुलर होल्डिंग के ऊपर का आप पजिश्री मॉर्गेज कर सकते हो। फिर था जैसे उत्तर प्रदेश में था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट को ही ट्राइब को ही ट्रांसफर करेगा, एसटी एसटी को ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे भी एक शब्द आया है एब ओरिजिनल ट्राइब, द ट्राइब डिक्लेयर्ड एज एब ओरिजिनल, वो केवल ट्रांसफर करेंगे तो किसको करेंगे, एब ओरिजिनल को, उसके अलावा किसी और को करेंगे तो वो ट्रांसफर इनवैलिड होगा। मगर अच्छा ये किया 170 में, कहा प्रॉपर्टी छीनेगी नहीं, वापस उस जिसने ट्रांसफर किया था ट्रांसफरर को वापस दिला दी जाएगी, उसी को फिर से डिवॉल्व होगी। इस तरह से 165 भी आप सब देखिए, आप सबके पास टिक होगा विदाउट वेस्टिंग टाइम, 165 भी टिक है। यहाँ भी वही था कि ट्रांसफर करिए तो ट्रांसफरी के पास एक अमाउंट से ज़्यादा लैंड नहीं रहना चाहिए, यहाँ लिखा नहीं है, किसी ने अगर देखा हो तो बताए कि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल्डिंग क्या है। इसमें तो ये लिखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उससे ज़्यादा ट्रांसफरी के पास नहीं होना चाहिए। तो अब उसके बाद हम लोग 160 देखिए किस पे थे, 170 हो गया, हाँ ठीक, लीज हो गया था ना,
लीज हो गया था,
नहीं अभी नहीं, लीज हो गया था नहीं, तो 170 हम लोग आके असल में उसको कनेक्ट कर रहे थे, हम लोग 165 प्लस 166 एंड 170 देख रहे थे कॉन्सिक्वेंसेस, बी पे था ना, ठीक है। अब आइए देखा जाए, हो गया था, बस 168 रह गया था, हाँ ठीक है। तो उसके पहले हम लोग 168 पे आ जाएं, वही टेक्निकल प्रॉब्लम जो अपने उत्तर प्रदेश में अभी अमेंड हुई है। आप सब जानते हैं कि सेक्शन 94 था ना, जो लीज अलाउ किया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उत्तर प्रदेश में, यूपी एलआरसी उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में किस सेक्शन में अलाउ किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आई थिंक 94 होगा, देखिएगा। तो सेक्शन 94 में उत्तर प्रदेश में एकदम नया 2020 में अलाउ कर दिया अमेंड करके कि आप लेट आउट कर सकते हैं अपनी होल्डिंग फॉर पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई रोक थी, तो मध्य प्रदेश में शुरू से ही लीज अलाउड थी, 168 कहता है लीज इज पॉसिबल। बट लीज का एक जो पूछा जाता है एग्जाम में कि लीज क्या पॉसिबल है? हाँ, मैक्सिमम पीरियड है 5 ईयर्स। कितने साल के लिए कर सकते हो? कुछ मध्य प्रदेश में 5 का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 बोलते हैं। तो हम लोग 168 अंकित सर को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और ये क्लास ऑन द बिहाफ ऑफ फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें जगह नहीं मिलती है। सटायर है ये नहीं? तो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट अमित लाल इंस्टीट्यूट के बिहाफ पर आप लोग को मिल रही है, जो फिलहाल ऑफलाइन भी है, आगे सरकार की मर्जी। ठीक है, तो चलिए अंकित सर 168 पे आ रहे हैं, लीज देखेंगे और कितने साल के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं बता दीजिए।
ठीक, सेक्शन 168 सब सेक्शन 1 लीज लीजेस सब सेक्शन 1 अब भूमि स्वामी में लीज एनी लैंड कंप्राइज्ड इन हिज होल्डिंग which has been assessed for the purpose of agriculture under section 59 for any period not exceeding 5 years at a time.
कितने दिन याद रखना है अपने लोग को? 5 years at a time. तो बहुत शॉर्ट में कि क्या मध्य प्रदेश में letting allowed है? Yes. कितने साल के लिए? 5 years. और next section बताइए।
सब section 2 The leasee shall hold the land on such terms and conditions as may be agreed upon between him and the Bhumi Swami.
ठीक है।
Subsection 3 Tahsildar on the application of the Bhumi Swami on the ground of breach of any material term or condition of the lease or the lease ceasing to be in force may order the lessee to hand over possession of the land to the Bhumi Swami.
ठीक है।
Subsection 4 If a lessee does not hand over the possession of the land to the Bhumi Swami on the expiry of the lease or within 7 days from the date of the other order passed by the Tahsildar under subsection 3 The Bhumi Swami shall be deemed to have been improperly dispossessed from his land by the lessee and shall be entitled to relief under section 250.
बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जब लीज कंप्लीट हो गया या 5 साल हो गए या जो भी आपने 2 साल 4 साल के लिए लेट आउट किया था, उसके बाद भी लेसी, देखिए जो मालिक होगा भूस्वामी उसको लेसर बोलेंगे, और जिसको आपने दिया है रेंट पे लीज पे उसको क्या बोलेंगे? लेसी। अब लेसी पजेशन छोड़ नहीं रहा है तो तहसीलदार उसको ऑर्डर करेगा कि अब लीज पीरियड कंप्लीट हुआ, अब आप पजेशन छोड़ दीजिए, यानी लेसर को वापस कर दीजिए, भूस्वामी को वापस। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस है कि उसको ट्रेसपासर समझिए और 250 सबको निकालिए। इसके साथ ही कनेक्ट करके पढ़ा दे, 250 निकालिए कि ऐसे मामले में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी लीज पीरियड डिटरमाइन यानी एंड होने के बाद भी मान लीजिए लेसी पजेशन नहीं वापस कर रहा है तो तहसीलदार ने ऑर्डर दिया, अब उसके आगे फिर भी नहीं छोड़ रहा है, तो 250 में इसका दिया है प्रोसीजर कि क्या होगा। हम लोग अपने यहाँ पढ़े थे इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेस पासर, अगर आप लोग 2-4 दिन मुझे याद अभी रहेगा UPLRC, उसके बाद मैं कमांड दे दूंगा अपने दिमाग पे कि खत्म, अब क्या हो जाओ? डिलीट हो जाओ, मुझे कोई एग्जाम नहीं देना, तो मैं तो उसी तरह कमांड दे देता हूँ, खत्म अब जाओ। मगर अभी मेरे ख्याल से 134 UPLRC में था, 134 और 136। यहाँ देखते हैं कि आखिर ऐसे में क्या किया जाए। 250
सेक्शन 250 री इंस्टेटमेंट ऑफ भूमि स्वामी इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड।
रुक जाओ बेटा, ऑनलाइन सबको बेटा फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और ये MP लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कोई और तो नहीं, कोई BRAC लेख बैठा हो? हाँ, हमने कहा गुड मॉर्निंग बोल दें सबको ना एक बार, बहुत दिन बाद फिर से पढ़ाइए तो वो हो जाता है। हाँ, इस ऑन करते रहो। अब आइए हम सब 250 ऑफ MPLRC देखने चल रहे हैं।
सेक्शन 250 रीइंस्टेटमेंट ऑफ भूमि स्वामी इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड सब सेक्शन वन द तहसीलदार शैल ए ऑन एप्लीकेशन ऑफ भूमि स्वामी ऑन एप्लीकेशन ऑफ भूमि स्वामी और हिज सक्सेसर इन इंटरेस्ट हु हैज बीन इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड इश्यू अ शो कॉल नोटिस टू द पर्सन ऑक्यूपाइंग भूमिस्वामीज लैंड टू एक्सप्लेन द ग्राउंड ऑफ हिज पोजिशन एंड मेक सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स फिट
ठीक है ठीक है ठीक
बी ये हम लोग सेक्शन 250 ऑफ द एमपी लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ रहे हैं
जो जो बच्चे नए आ रहे हैं सबको HNY 2022
हैप्पी न्यू ईयर है
हाँ HNY 20 अब इतना नहीं समझ पाएगा तो फिर लेफ्ट कर जाए हाँ
बी ऑन कमिंग टू नो दैट अ भूमिस्वामी हैज बीन इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑन हिज ओन मोशन Start proceedings under clause A, subsection 2. If after the inquiry the tehsildar finds that the Bhumiswami has been improperly dispossessed, he shall order the restoration of the possession to the Bhumiswami and also put him in possession of the land.
ठीक है.
Third, the tehsildar may at any stage of the inquiry pass an interim order. To the person occupying the land to hand over its possession to the Bhumi Swami, if he finds that the Bhumi Swami was dispossessed by opposite party within 6 months prior to the submission of the application or commencement of suo motu proceedings under this section.
छोड़ दीजिए तो इसको बस इतना जानना था कि हम लोग ओरिजिनली थे 168 पे कि अगर लीज आप दे सकते हैं मैक्सिमम पीरियड है 5 years का फिर से आप लीज दीजिए मगर एट ए टाइम कितने साल के लिए 5 साल के लिए लीज एंड हो गया तो आप उसको रिन्यू कर लीजिए मगर अगर विदाउट लीज या लीज पीरियड एंड हो गया टर्मिनेट हो गया डिटरमाइंड हो गया उसके बाद भी लेसी पोजीशन मेंटेन कर रहा है और लेसर को यानी भूस्वामी को वापस नहीं कर रहा है तो इसके रेमेडी है जो भी है वो 250 प्लस 168 मिला के तहसीलदार किसके पास है सब कुछ जो आपके एमपी में फ्री में मेरे ख्याल से आप लोग तो कोई पेपर देखे ही होंगे मैंने देखा था पहले तो पेपर ऐसे ही आता था ज़्यादातर वो अथॉरिटीज पूछते थे कि किसकी पावर है इसको हटाने की तो ये किसकी पावर है क्योंकि दो ही होते तहसीलदार और SDO इसी में बहुत बम्पर कन्फ्यूज़न होगा इन्हीं की पावर ओवरलैपिंग है तो यहाँ तहसीलदार की पावर है हम लोगों ने 168 पढ़ लिया आगे चलिए 169 क्या था
इसमें सब सेक्शन 7 एक है इंपॉर्टेंट है इसी का
हाँ हाँ करा दीजिए
वेयर एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड अंडर सब सेक्शन 2 फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंड टू द भूमि स्वामी द अपोजिट पार्टी शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज
हाँ ये देखिए एमपी में जो फाइन है भी 1,00,000 रुपया भी दिखाएंगे इसके ऊपर है 248 में जब पढ़ाएंगे तो पेनाल्टी उनाल्टी वहाँ 1,00,000 रुपये है पेनाल्टीज तो ये देखिए ये पूछा जाए कि अगर किसी ने अनलॉफुली पजेस कर रखा है ऑर्डर के बाद भी नहीं छोड़ रहा है तो कितना फाइन इम्पोज किया सकता है उसके ऊपर 50,000 10-20 रुपया हमारे यहाँ यूपी रेवेन्यू कोड में हम ज़्यादा 2,000-5,000 रुपया बाउंड्री मार्क डिस्प्यूट में कितना था 1,000 रुपीज था 227 में यहाँ पे बड़ा अमाउंट है 50,000 अब हम लोग फिर से वापस आ जाए 168 पे थे
168
वही लीज पे थे ना 169 देखिए क्या है
तो सब सेक्शन 4
छोड़ दीजिए आगे चलते रहे हाँ
अब इसके बाद है 170
में हम लोगों ने पढ़ लिया था
ऑफ ट्रांसफर इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 165
अगर 165 के कंट्रावेंशन में तो ट्रांसफर को हम लोग अवॉइड करते हैं और ओरिजिनल ट्राइब्स अगर है कोई तो उसको प्रॉपर्टी क्या किया जाता है वापस दिलाया जाता है बच्चे कह रहे थे 170 बी पे आपके हाँ वहीं पे आ जाइए
170 कैपिटल बी
एमपी लैंड रेवेन्यू कोड एमपी एलआरसी ठीक है
reversion of land of members of aboriginal tribe which was transferred by fraud.
ठीक है, अगर फ्रॉड से ट्रांसफर हुआ है, किसी एबोरिजिनल ट्राइब से फ्रॉडुलेंटली कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली गई है, तो उसके परिवार को, अगर वो नहीं है तो उसके जो भी अदर उसके एयर्स हैं उनको वापस कर दिया जाएगा. बता दीजिए.
सब सेक्शन वन, एवरी पर्सन हु ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड एक्ट 1980 हेयर इन आफ्टर लखन सिंह बुलाएंगे हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1980 इज इन पोजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विच बिलोंग टू अ मेंबर ऑफ ट्राइब विच हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी एन एबोरिजिनल ट्राइब अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 165 बिटवीन द पीरियड commencing on the 2nd October 1959 and ending on the date of the commencement of Amendment Act 1980 shall within 2 years of such commencement notify to the sub-divisional officer in such form and in such manner as may be prescribed all the information as to how he has come in possession of such land.
ठीक है, इसको बहुत वो नहीं करिए, बस इतना जानिए अब ओरिजिनल ट्राइब्स के साथ अगर फ्रॉड करके या उन्होंने नॉन अब ओरिजिनल ट्राइब को अगर ट्रांसफर कर दिया है तो वो ट्रांसफर को अवॉइड किया जाएगा और प्रॉपर्टी को रीस्टोर कराया जाएगा. वापस किसको दिला दिया जाएगा? मेंबर ऑफ सच ट्रांसफरर. बस इसके बाद आ जाइए 171 ऑनवर्ड्स. चलिए अबेंडनमेंट
170 कैपिटल डी सेकेंड अपील बार्ड.
हाँ ये आता है कुछ केसेस में सेकेंड अपील बार्ड.
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड नो सेकेंड अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड ऑन और आफ्टर द 24th अक्टूबर 1983 अंडर सेक्शन 170 कैपिटल ए एंड सेक्शन 170 कैपिटल बी.
तो कह रहा 170 ए और बी के मामलों में सेकेंड अपील नहीं होगी, जो भी होगी केवल फर्स्ट अपील यानी एक अपील होगी. तो 170 ए और बी की सेकेंड अपील नहीं होगी, बस इतना याद रखिए. और चलिए 170
सेक्शन 173 रिलिंक्विशमेंट.
रिलिंक्विशमेंट मतलब त्याग देना ना, रिलिंक्विश किया. भूस्वामी ने छोड़ दिया तो छोड़ने का आखिर क्या प्रोसेस? देखिए एक होता, एक वर्ड होता है रिलिंक्विश और एक होता है अबेंडेंड. ठीक है, एक में छोड़ा और एक में छीना गया. तो जरा सा हम लोग रिलिंक्विश देखते हैं और अबेंडेंट का मतलब आपने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली आपने काम ही उसमें करना छोड़ दिया, एग्रीकल्चर छोड़ दिया. तो इन दोनों को देखें 173 और 176 होगा. बताइए
सब्जेक्ट टू रूल्स मेड अंडर दिस कोड ए भूमि स्वामी मे रिलिंक्विश हिज राइट्स दैट इज रिजाइन देम इन फेवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बट सब्जेक्ट टू एनी राइट्स tenures, encumbrances or equities lawfully subsisting in favor of any person other than the state government or the Bhumi Swami be given notice in writing to the Tehsildar not less than 30 days before the date of commencement of the agricultural year and thereupon he shall cease to be a Bhumi Swami from the agricultural year next following such date of such order in case of the relinquishment of only a part of the holding the tehsildar shall apportion the assessment of the holding in accordance with the rules made under this code provided that the relinquishment of a holding or any part of a holding which is subject to an encumbrance or a charge shall not be valid.
ठीक है, कह रहा यहाँ भी किसको आप छोड़ना होगा, किसको नोटिस देना होगा एग्रीकल्चर ईयर के कमेंसमेंट के 30 डेज के पहले? तहसीलदार. तो याद रखिएगा भू स्वामी जब अपनी लैंड को छोड़ना चाहता है, रिलिंक्विश करना चाहता है, गवर्नमेंट को देना चाहता है, तो वो नोटिस दे दे तहसीलदार को और 30 डेज की नोटिस होगी, तहसीलदार को दे दे कि भाई हम आज से अपनी फील्ड छोड़ रहे हैं तो अब इसमें कोई लैंड रेवेन्यू हमारे फेवर में असेस, हमारे अगेंस्ट असेस ना करिएगा। तो 173 है रिलिंक्विशमेंट और 176 अबैंडोनमेंट। देखिए 176
अबैंडोनमेंट ऑफ होल्डिंग्स। सब सेक्शन वन, इफ अ भूमिस्वामी सीजेस टू कल्टीवेट हिज होल्डिंग फॉर 5 years either by himself or by some other person, does not pay land revenue and has left the village in which he usually resides, the tehsildar may, after such inquiry as he may deem necessary, take possession of the land comprising the holding and arrange for its cultivation by letting it out on behalf of the Bhumiswami for a period of one agricultural year at a time. Subsection 2.
बस रुकिएगा, पहले इतना पूछ तो ले। अबैंडनमेंट हम लोगों ने पढ़ा था यूपीएलआरसी में, उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में, कितने साल तक आप खेती नहीं करोगे तो अबैंडन डिक्लेयर होगी। हाँ बेटा गेस,
3 years
ना, 122 था ना, मेरे ख्याल से इधी के करीब करीब रहा होगा। कौन सेक्शन था बेटा? मेरे ख्याल से 122 था। वहां पे भी यही था कि अगर नॉन यूज आप कर रहे हैं, और यहां पर कितना है, 5 years। बस इस तरह का कंपरेटिव चार्ट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश यूपी एलआरसी में भी अबैंडनमेंट है और यहां पे भी अबैंडनमेंट है। वहां पे अगर 3 years है नॉन यूजर पे अबैंडन होगा और आपके बिहाव पर उसको किसी को लेट आउट किया जाएगा, और यहाँ पे भी तहसीलदार यही काम कर रहा है, बस ईयर का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने कहा ना 5 साल या 5 हेक्टेयर कुछ ज्यादा ही, मतलब 5 को लेके इनका क्रेज है। तो देखिए यहाँ पे भी कितने साल का है नॉन यूजर, 5 साल अगर खेती नहीं कर रहे हैं तो तहसीलदार उसको अबैंडन डिक्लेयर करके किसी और को लेट आउट कर देगा। और चलिए
सब सेक्शन 2, वेयर द भूमिस्वामी और एनी अदर पर्सन लॉफुल्ली इंटाइटल्ड टू द लैंड क्लेम्स इट विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑन विच द तहसीलदार टुक पोजेशन ऑफ द लैंड, इट शैल बी रीस्टोर्ड टू हिम ऑन पेमेंट ऑफ द ड्यूज इफ एनी एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द तहसीलदार मे थिंक फिट।
बहुत बढ़िया। लिमिटेशन कितने साल की रखी, 5 साल। यानी जिस साल अबैंडन्ड हो गया, तहसीलदार ने कब्जा ले लिया और डिक्लेयर कर दिया लैंड स्टैंड्स विद अबैंडन्ड, आज से ये अबैंडन्ड लैंड हो गई और इस पे हम किसी को लेट आउट कर रहे हैं, उस दिन से 5 साल के भीतर वापस लेना हो तो ले लीजिए। अगर उस 5 years के भीतर नहीं आपने एप्लीकेशन दे के लिया तो फिर वो वेस्ट कर जाएगी गवर्नमेंट में। देखिए हाँ,
सब सेक्शन 3, where no claim is preferred under subsection 2 or if a claim is preferred and disallowed on the receipt of a report from tehsildar, the subdivisional officer after making such inquiry as he may deem fit shall make an order declaring the holding abandoned and the holding shall vest absolutely in the state government from such date as may be specified in that behalf in the order।
क्लियर हुआ सबको? 5 साल तक अगर यूज नहीं कर रहा भूस्वामी तो फिर तहसीलदार उसका पोजेशन ले लेगा और उसको किसी को क्या कर देगा, लेट आउट कर देगा। अब फर्दर वो कितने साल तहसीलदार और वेट करेगा, 5 years, 5 साल और वेट करेगा। अगर आप 5 साल और वेट किया और आपकी ओर से कोई भी एप्लीकेशन भूस्वामी की ओर से नहीं आया, तो यानी 5 years नॉन यूज और 5 years आपकी ओर से निगलेक्ट, यानी आपने तहसीलदार को कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, तो उसके बाद अब ये लैंड अबैंडन्ड डिक्लेयर हो जाएगी और प्रॉपर्टी किस में वेस्ट हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट पे चली जाएगी। तो टोटल 10 साल हो गए ना। हाँ बेटा,
सर कौन सा सेक्शन?
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अरे पता नहीं बेटा, 176। जानते हो इस बार न्यू ईयर में एक ही चीज, हम थोड़ा सा घुमक्कड़ी जिज्ञासा के व्यक्ति हैं तो कुछ पार्टी ओटी गाई हैं, हम घूमते रहते हैं। हाँ बेटा, रिपील है? अरे कोई नहीं बेटा, थैंक यू, तुम बोला करो यार तुम लोग।
तो ये रिपील्ड है आप लोग में,
कब से किया है बेटा ये जरा बताओ। तुम लोगों में रिपील्ड है बेटा,
कब की है आपकी?
ऑनलाइन ऑनलाइन बेरेक पे रिपील्ड है
2018। नहीं नहीं नहीं, ये 2018 की है, ये हमारा 2020 का है, फिर से ये अब आ गई है,
ये फिर से आ गई। हैप्पी न्यू ईयर 2022। ये हमें लग रहा फिर ये कुछ वहाँ,
ये जो है इंसर्टेड बाई एमपी एक्ट नंबर 2020 में फिर इंसर्ट किया।
ये बेटा इंसर्ट हो गया,
वो छोड़ दीजिए आप फिर से।
इकतीस दिसंबर
2018।
बहुत अच्छा बेटा, देखो गया भी और
फिर आ गया,
आया भी। ये अपनी बेरेक तो नई अभी मिली है,
2020 की है।
हाँ अभी अभी एकदम, कई तीन या चार तो बेरेक हम लोग हर चीज की ले रखते हैं,
इसकी हर तीन साल इसकी तीन हो गई।
तो 31 दिसंबर को क्या हमको खास दिखा? 30 या 31 दिसंबर को नया साल कोई भी मुर्गा अपने परिवार समेत नहीं मना पाया, हर जगह चिकन भुन रहा। अच्छा मैं खाता नहीं हूं, बट मैं ऐसा फीलिंग कर रहा था कि हम लोग का तो न्यू ईयर हुआ, मगर ये कड़कनाथों का क्या हुआ? न्यू ईयर हम लोग का हैप्पी होता है, उन सबों का क्या होता होगा? कहता होगा इंसान बहुत खुश हैं, गया। मतलब इंसान, अच्छा इंसान जब दुखी होता है, इसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती, गम होता है, तब वो सब खुश होते होंगे ना, चल भैया हमारी ओर ध्यान। क्योंकि अगर कोई इनके यहाँ बढ़िया ओकेजन हुआ न्यू ईयर वेयर, तो हमारा तो सैड, उन सबों का तो क्या हो जाता होगा? सोच के देखिएगा, पर क्यों सोचें, नहीं सोचना चाहिए। चलो, तो ये बेटा गया था, आ गया,
फिर 2020 में
आ गया। पांच पांच प्लस, यानी 5 ईयर का नॉन यूजर और फिर 5 ईयर्स का जो तहसीलदार अपने पोजीशन मिलेगा, उसके बाद इसको क्या डिक्लेयर कर देगा? अबेंडेंट, और प्रॉपर्टी किसमें वेस्ट हो जाएगी? एब्सोल्यूट हो जाएगा, लिखा है एब्सोल्यूट। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बताइए,
फिर है डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग, सेक्शन 177।
डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग, हाँ देखिए किसकी है, हाँ।
सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 177। इफ अ भूमिस्वामी हुज लैंड हैज बीन असेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर अंडर सेक्शन 59 और हु होल्ड्स लैंड फॉर ड्वेलिंग पर्पसेस डाइज विदाउट नोन हेयर्स, द तहसीलदार शैल टेक पोजीशन ऑफ हिज लैंड एंड मे लीज इट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम।
देखिए ये 177, ये एक तरह से इस्चियत प्रॉपर्टी नहीं हम लोग पढ़े थे, कि अगर किसी का डेथ हुआ और उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नोन में है ही नहीं, तो फिर ये प्रॉपर्टी किस में वेस्ट हो जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट में। तो एक तरह से 177 जो है वो उसी तरह की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, कि अगर किसी का डेथ हुआ है भूस्वामी का और उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट में वेस्ट कर जाएगी और फिर उसको लेट आउट करते जाएंगे, लीज देते हैं, इसको गवर्नमेंट लेसी बोलते हैं, देते जाएंगे और किसी को लेट आउट कर देंगे। ये था 177। तो इसको, इस पे आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई हेडिंग इशियट प्रॉपर्टी या पर्सन हैविंग नो एयर्स कुछ करके आप लिख सकते हैं, तो आपको भूलेगा नहीं। तो अबेंडनमेंट 176 और इशियट प्रॉपर्टी हो गई 177। और चलिए
178 सेक्शन, पार्टीशन ऑफ होल्डिंग,
पार्टीशन डिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं स्यू फॉर डिवीजन, हम लोग पढ़े थे ना, भूमिधर हैज अ राइट टू स्यू फॉर डिवीजन 117 मेरे ख्याल से था, ऐसे कुछ रहा होगा अपने यहाँ यूपी एलआरसी में। यहाँ पे है एमपी एलआरसी और यहाँ पे कह रहा है पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। तो जरा देखा जाए कौन हम लोग जो पढ़े थे उत्तर प्रदेश में, मेरे ख्याल से कोर्ट थी एसडीएम थी एसडीओ, ठीक है। यहाँ देखिए किसकी कोर्ट में जाके पार्टीशन कराएगा भूस्वामी, हाँ बताइए ज्वाइंट होल्डिंग्स की।
सब सेक्शन वन, इफ इन एनी होल्डिंग विच हैज बीन असिस्ट फॉर पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर अंडर सेक्शन 59 देयर आर मोर देन वन भूमि स्वामी एनी सच भूमि स्वामी मे अप्लाई टू अ तहसीलदार, अंडरलाइन कर तहसीलदार, फॉर अ पार्टीशन ऑफ हिज शेयर इन द होल्डिंग।
तो अब देखिए यहाँ मुझे लगता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर में सबसे अच्छी बड़ी अथॉरिटी हम लोग पास निकल के आ रही है कौन सी है, तहसीलदार, क्योंकि दो ही था। ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानिए, जो ब्रिटिशर्स पीरियड में भी दो ही अथॉरिटी बड़ी मजबूत होती थी, एक होता था तहसीलदार और दूसरा होता था कोतवाल। नाम सुना होगा ना, कोतवाल का नाम सुने है ना, SHO जो सीनियर हाउस ऑफिसर बोलते हैं ना, स्टेशन ऑफिसर, जो सबसे ऑफिसर इंचार्ज ना थाना, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ थाना, तो उसको जो शहर का सबसे बड़ा थाना जैसे यहाँ हजरतगंज है, तो जो थाना होता था उसके थानेदार को क्या बोलते थे, कोतवाल। और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उस एरिया का इलाके का हेड होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, तहसीलदार। तो यहाँ पर तहसीलदार के पास ही उसकी कोर्ट में जाना पड़ेगा डिवीजन के लिए, सू फॉर डिवीजन, हाँ बताइए।
प्रोवाइडेड दैट इफ एनी क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज रेज्ड द तहसीलदार शैल स्टे द प्रोसीडिंग बिफोर हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months टू फैसिलिटेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सिविल सूट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ टाइटल,
ठीक है। तो अगर कोई टाइटल से रिलेटेड आ गया डिस्प्यूट, यहाँ तो देखिए ये था ना अनडिस्प्यूटेड मैटर हो, दो भाई आ रहे हैं कह रहे हैं हम ही दो वारिस हैं और हम पार्टीशन कर दो, मगर तब तक तीसरा कोई निकल के आया और कहा ये लोग है ही नहीं, यानी टाइटल डिस्प्यूट हो गया। तो टाइटल डिस्प्यूट तो सिविल कोर्ट सॉल्व करेगी ना, हमने पढ़ा ना MP में ज्यूरिसडिक्शन बार नहीं है, तो टाइटल डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, सिविल कोर्ट। तो तहसीलदार को क्या करना पड़ेगा, ये सूट फॉर डिवीजन यानी पार्टीशन के सूट को स्टे कर दे और कहें पहले टाइटल क्या हो जाए, डिसाइड हो जाए, तब हम ये टाइटल पार्टीशन सूट डिसाइड करेंगे, तो स्टे कर देंगे, हाँ ठीक है 3 months का है।
वन कैपिटल ए, इफ अ सिविल सूट इज फाइल्ड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 and stay order is obtained from the civil court, the tehsildar shall stay his proceedings pending the decision of the civil court. If no civil suit is filed within the said period, he shall vacate the stay order and proceed to partition the holding in accordance with the entries in the record of right.
ठीक है, तो अच्छा एक चीज और थोड़ा सा मार्क करिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में हमने आप सबको बताया होगा कि उत्तर प्रदेश में सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन लैंड के मामलों में बार था ना, याद है बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, मगर मध्य प्रदेश में बार नहीं। तो मध्य प्रदेश में जो हमारी सिविल कोर्ट है वो इन सब मामलों में सॉल्व करती है, डिस्प्यूट जितने हैं टाइटल उटिल जमीन मीन का मतलब बाउंड्री मार्क वर्क में भी मैटर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा देर इज अ डिफरेंस इन अ सिलेबस, ऐसा नहीं कि कहीं यहाँ पर आप देखते होंगे जो लैंड लॉ है वो केवल मेंस का एक छोटा सा पार्ट है, और मध्य प्रदेश में जो लैंड लॉ है वो उनका किसका सिलेबस बनता है, प्रिलिमिनरी का भी सब्सटेंशियल पार्ट। क्यों, क्योंकि वहां जो सिविल जज आप लोग बनेंगे तो वहां पे तो आपको ये मैटर सॉल्व करना होगा ना, इसीलिए उन्होंने प्रिलिमिनरी के सिलेबस में भी इसको रखा है कि इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए क्योंकि ये मैटर आपकी कोर्ट में आएगा। मगर उत्तर प्रदेश में वो केवल हम लोग के लिए एकेडमिक पर्पस से है, उत्तर प्रदेश में जब आप लोग जॉब करेंगे तो कोई लैंड का मैटर जनरली आपके यहाँ नहीं आना, इसीलिए देखिए उत्तर प्रदेश में प्रिलिमिनरी में नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में इसको किसके सिलेबस में रखा है, प्रिलिमिनरी में भी है, मेंस में भी है, और बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन इसका काउंट होता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में इसीलिए देख रहे हैं, नेक्स्ट चलिए छोड़ दीजिए उसको, हो गया
ये बात। फिर सेक्शन 180 पे आ जाइए, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ ट्रीज,
हरे बड़े पेड़ का बहुत वहाँ ध्यान रखा जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में ग्रीनरी है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि आप यूजुफ्रक्ट तो ट्रांसफर कर सकते हो, मगर बिना परमिशन के कोई ग्रीन ट्री ट्रांसफर, आम ट्रांसफर कर दो कि हमारे यहाँ जो इस साल बगीचे में आम लगेगा वो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो तो कर लो, पर आम का पेड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा 180 प्रोवाइड कर रहा है, वो पूरी लैंड के साथ बिकता है देखिए, और नहीं तो फिर फॉरेस्ट से परमिशन लीजिए। हाँ,
सेक्शन 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ ट्रीज, सब सेक्शन 1, द ट्रांसफर बाय अ भूमिस्वामी ऑफ एनी ट्रीज स्टैंडिंग इन एनी लैंड कंप्राइज्ड इन हिज होल्डिंग एक्सेप्ट द प्रोड्यूस ऑफ सच ट्रीज शैल बी वॉइड अनलेस द लैंड इटसेल्फ इज ट्रांसफर्ड। सबसेक्शन 2, ट्रीज स्टैंडिंग इन एनी लैंड कंप्राइज्ड इन द होल्डिंग ऑफ अ भूमिस्वामी शैल नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट और अंडर एन ऑर्डर ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर और अंडर एन ऑर्डर मेड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अनलेस द लैंड इटसेल्फ इज अटैच्ड और सोल्ड।
तो देखिए सीधा एकदम 180 का थोड़ा प्रिंसिपल बस जान लें कि आप फल वगैरह फ्रूट्स तो उसको आप बेच सकते हैं, मगर ट्री बेची नहीं जाएगी। ट्री पूरी किसके साथ पार्ट माना जाता है, लैंड होल्डिंग का ना, तो हम लैंड बेचेंगे साथ ही ट्री भी चली जाएगी। मगर आप क्यों, क्योंकि आगे चल के अभी आएगा प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग्स, यानी वहां ग्रीन ट्रीज को काटने में बैन है तो यहां पे भी, पर इस तरह का लैंड लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं, मगर वहां के लैंड लॉ में देखिए 180 में लिखा गया है कि आप जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी उससे बिना परमिशन लिए हुए कोई ट्री सेल आउट नहीं करेंगे। ट्री हमेशा किसका पार्ट मानी जाएगी, लैंड का। हाँ, आप उसमें जो फ्रूट है यूजुफ्रक्ट है उसको आप बेच सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। तो यही 180 कह रहा था, ठीक है। और चलिए ट्री, अच्छा जब जमीन बेचते होंगे भाई, हम जमीन बेच रहे हैं उसमें मान लीजिए 10 पेड़ लगे हैं, तब आप पूछ रहे हैं ना, वो तो आपका वैल्यूएशन, वो ये हमारा आपका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो इस मकान का वैल्यूएशन कैसे लगाओगे, हम 10 करोड़ मांगेंगे आप कहेंगे 10 रुपया नहीं देंगे, इट्स अ मैटर ऑफ नीगो। देखो वैल्यूएशन तब लगाया जाता जब एक्विजिशन होता है, सरकार एक्वायर करती ना, सरकार तो सर्किल रेट पे एक्वायर करती है सब कुछ। तो अगर प्राइवेट ट्रांसफर हो रहा ना, तो आप वो पढ़े ना, कॉन्ट्रैक्ट इज मैटर ऑफ योर प्राइवेट निगोशिएशन ना भाई, परचेजर तो मैक्सिमम रेट चाहेगा और बायर वो तो चाहेगा बहुत मिनिमम में आ जाए। तो एक तो आपकी कहते हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट इज एट स्वीट बिल ऑफ पार्टीज ना, वो तो आपके ऊपर है कितने पे खरीद लें और कितने पे बेच दें। हाँ बताइए।
चैप्टर 13, गवर्नमेंट लीजीज एंड सर्विस लैंड। सेक्शन 181, गवर्नमेंट लीजीज, सब सेक्शन 1, एवरी पर्सन हु होल्ड्स लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और टू हुम अ राइट टू ऑक्युपाई लैंड इज ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और टू कलेक्टर एंड हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड लैंड एज अ भूमिस्वामी शैल बी कॉल्ड अ गवर्नमेंट लीसी
इन रिस्पेक्ट
ऑफ सच लैंड।
फिर से पढ़ दीजिए।
सेक्शन 181, गवर्नमेंट लीजी, सब सेक्शन 1, every person who holds land from the state government or to whom a right to occupy land is granted by the state government or to collector and who is not entitled to hold land as a bhumiswami shall be called a government lessee in respect of such land।
yani state government ne jisko let out kiya hai diya hai usko hum log kya bolte hain, government lessee। सरकार अगर अपनी जमीन पे या और भी जो अभी नहीं पट दिखा रहा था अबेंडेंट लैंड वगैरह उस पे जिसको लेट आउट करेगी, तो ऐसा जो लेसी है उसको हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट लेसी। ये गवर्नमेंट भी कर सकता है और कलेक्टर। तो ध्यान रखिए गवर्नमेंट लेसी की बात कही गई है, मेरे ख्याल से यूपी एलआरसी में भी था ना 148 या कुछ ऐसे ही था, यूपीएलआरसी में भी था, यहाँ पे भी है गवर्नमेंट लीज। सरकार जब आपको पट्टे पे यानी लीज पे देती है तो उसको गवर्नमेंट लीज ही कहते हैं, और जनरली इस तरह की लैंड होती है जो एक्स्ट्रा लैंड है, जो वेस्टेड नहीं किसी में, उसी पे लीज दिया जाता है। अब आ रहा है सर्विस लैंड। हाँ,
सेक्शन 183 सर्विस लैंड।
सर्विस लैंड याद है ना, सेक्शन
2 V2।
देखिए एक बार, देखिए कौन सी लैंड सर्विस लैंड कहलाएगी। सेक्शन 2 इज अ डिफिनीशन क्लॉज, उसमें वी विक्ट्री वाला ना,
हाँ
विक्ट्री वाला वी 2। देखिए सबको निकाल के बताइए पहले, सर्विस लैंड होती कौन सी है ना, वी 2 है ना। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग जो अपना 181 या जो भी है 182 जो भी सेक्शन था वहां पे भी लिखेंगे कि डिफिनीशन क्या। अब देखें जरा कौन सी लैंड सर्विस लैंड कहलाएगी। हाँ,
सब सेक्शन 1 सेक्शन 183 सर्विस लैंड सब सेक्शन, नहीं पहले क्या वो उस पे आ जाए।
हाँ, वो V2 पढ़ा दीजिए,
V2 पहले पढ़ा दें।
वो रिवीजन भी होता रहेगा ना इन लोगों का।
सर्विस लैंड सेक्शन 2
टू विक्ट्री वाला भी है।
कहाँ गया रे V2, इतना ज्यादा जोड़ दिया इसमें। हाँ, V2 मीन्स सर्विस लैंड मीन्स सच लैंड इन अ नॉन अर्बन एरिया विच इज गिवन टू अ कोटवार फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ पोस्ट।
तो सर्विस लैंड हम लोगों ने पढ़ा कौन सी लैंड होती है, जो कोटवार, कोटवार मतलब विलेज चौकीदार हमने बताया था ना एक, तो अभी आगे चल के आएगा वो बंदा आएगा, कोटवार आएगा जिसका कौन वो करे। तो एक कोटवार नामक एक चौकीदार होता है, विलेज चौकीदार। अब विलेज चौकीदार को तो भाई देखिए पहले पैसा तो इतना होता नहीं सरकार के पास, तो मंथली रिम्यूनरेशन की जगह वो क्या देते थे उनको, उस गांव में जो एक्स्ट्रा लैंड थी, जो रेजिड्यू लैंड होती थी बची हुई, अभी निस्तार पत्रक आएगा उसमें देखेंगे, तो एक्स्ट्रा जो लैंड होती थी उसी में से लैंड को कुछ दे देते थे कि तुम अपना इसी में एग्रीकल्चर करो और अपना मीट आउट करो, लिवलीहुड जीवन यापन करो, और इस गांव में आप कोटवार की तरह नियुक्त हो जाओ। तो सर्विस लैंड कौन सी लैंड, विच इज अलॉटेड टू कोटवार। बहुत बढ़िया, अब बताइए। अच्छा एक चीज और बताइए, यहां तो बच्चे बताएंगे ही, ऑनलाइन बताइए बेटा कुछ, ये जो इस बार हम मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, कुछ एमपी का लैंड लॉ या अभी एकोमोडेशन भी पढ़ाएंगे, तो इससे आप लोग को कुछ बेनिफिट हो रहा है? हाँ ऑनलाइन सो सब हो, ठीक एक ही को फायदा हुआ है केवल।
यस सर, हो रहा है।
हाँ नहीं तो हमको क्या था बेटा, हमारी तो ज्यादा अच्छी दिहाड़ी बनेगी आईपीसी पे। अब तक आईपीसी शुरू करते झूमते हुए लोग, अरे सर क्या बना दिया आपने, चक्कू मारने मर भी सकता है नहीं भी मर सकता है। अरे सर तो
कई कोचिंगों में तो आईपीसी
वो आईपीसी शुरू होता है आईपीसी अब खत्म भी हो जाती है कोचिंग, वो बताते हैं कि सर फिर आईपीसी, हम कहते यार ये बहुत फास्ट है, तो क्या पढ़ा इतने आईपीसी सीआरपीसी कॉन्ट्रैक्ट फिर आईपीसी। तो हम लोग का
साइकिल स्टार्ट कब होगा?
हाँ बेटा थैंक यू बेटा, वैसे 10th ऑफ द जनवरी हम लोग ने डिसाइड कर रखा है, तो इस वीक में मतलब इस वीक में एमपी का ये जो दोनों लॉ है इसको हम लोग पढ़ डालेंगे। ओके बेटा, तो चलिए मान के चला जाए कि ठीक लग रहा होगा ऐसा मान के, क्योंकि उन बच्चों को नहीं मजा आ रहा होगा जो बच्चे अभी अपियरिंग हैं, जो अभी लास्ट ईयर में हैं वो हैं, उनको लग रहा होगा एमपी की ऐसी वैकेंसी है जो मुझे लगता है वो लगभग हर साल देते ही देते हैं, तो इसलिए हम लोग को वो उसकी प्रिपरेशन करना भी ठीक रहेगा। हाँ बताइए।
सेक्शन 183 सर्विस लैंड सब सेक्शन 1 Any person holding land on the condition of rendering service as a kotwar shall cease to be entitled to such land if he diverts such land to non-agricultural purposes.
ठीक है, कोटवार को खेती के लिए दिया गया है ना, और non-agriculture use के लिए कर देगा तो उससे land वापस ले ली जाएगी. ठीक है, और चलिए.
Subsection 2. Any right of a kotwar in the service land shall not be transferred nor be transferable by way of sale, gift, mortgage, sublease or otherwise except by a sublease for a period not exceeding 1 year.
फिर से पढ़िए इसमें.
Any right of a kotwar in the service land shall not be transferred nor be transferable by way of sale, gift, mortgage, sublease or otherwise except by a sublease for a period not exceeding 1 year.
ठीक है, तो कह रहा है ये तो नॉन ट्रांसफरेबल लैंड होती है ना, तो कह रहा है ये सर्विस लैंड कैसी लैंड है, जनरली ये ट्रांसफरेबल नहीं है, और अगर ट्रांसफर करेंगे तो वाइड हो जाएगा यानी छिन जाएगा. मगर तो कह रहा है ना गिफ्ट होगा ना सेल होगा, बट हाँ आप चाहें तो सब लीज कर लें. सब लीज क्यों बोला है, क्योंकि तो कोटवार को तो खुद ही लीज दिया गया, तो वो सब लीज कर ले, मगर मैक्सिमम पीरियड कितना है,
एक साल,
1 year. ये तो आप कहीं ध्यान रखिए कि जो सर्विस लैंड है उसकी जो सब लेटिंग होती है उसका मैक्सिमम पीरियड कितना
लगाते हैं, आप लोग चला करो.
हाँ, बेरेक पे
यही सब पूछता है.
बस बस यही पॉइंट ही है, और तो कुछ है ही नहीं कि कितना दिन कितना महीना कौन अथॉरिटी होगा, इसके अलावा नहीं. और जिस हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं दोनों एक्ट पढ़ा दें, तो अगर अगर 30 क्वेश्चंस आएंगे तो हमें लगता है यू कैन इजीली अटेम्प्ट 28, तो इतना सक्सेस रेशियो रहेगा, क्योंकि अब की हम लोग पढ़ा रहे हैं. तो ये एमपी का आपकी पकड़े हैं, तो देखिएगा ऐसा होएगा ही नहीं, रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपके आंसर का. हाँ, और चलिए.
सबसेक्शन 3. इफ अ कोटवार डाइज, रिजाइंस और इज लॉफुली डिसमिस्ड, द सर्विस लैंड शैल पास टू हिज सक्सेसर इन ऑफिस.
यानी देखिए ये हेरिटेबल है ना, नहीं सॉरी हेरिटेबल नहीं है, सक्सेसर इन ऑफिस है, इट इज नॉन हेरिटेबल.
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्री
प्री, ये ध्यान रखिए. अगर कोटवार की डेथ होती है तो क्या उसके बच्चे उसको इनहेरिट करेंगे? नो. वो किसको मिलेगा? जो नेक्स्ट कोटवार बनेगा, जो भी सक्सेसर इन ऑफिस, यानी जो नेक्स्ट कोटवार. कोटवार कौन? विलेज चौकीदार. तो जो नेक्स्ट कोटवार अपॉइंट होगा ये प्रॉप उसको मिल जाएगी ना, क्योंकि ये तो लैंड सर्विस लैंड जो उसको अलॉट की गई है वो बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट है ना, तो उस पोस्ट पे जो भी बैठेगा उसको वो सर्विस लैंड मिल जाएगी. तो यानी एक तरह से एक्स ऑफिशियो पोस्ट है. और चलिए
ठीक है.
अच्छा, सर्विस लैंड का जो डिफिनीशन तो नहीं दिया, मगर V2 में बोला, सेक्शन 2 V2 में कहा सर्विस लैंड का मतलब वो लैंड जो कोटवार को अलॉट की जाती है एज अ रिम्यूनरेशन.
सेवा भूमि इसका नाम,
सेवा भूमि ही है. तो यानी कोटवार जो है, कोटवार जो होता है वो अपनी सर्विसेज देता है एज अ विलेज चौकीदार, और उसको रिम्यूनरेशन के रूप में ये सेवा भूमि यानी सर्विस लैंड दे दी जाती, कि इसमें आप खेती होती करके अपना जी. देखिए पहले जमाने में ना, थोड़ा सा इसको फिलोसफी कर लीजिए, आज के जमाने में हमें नहीं, आप कहें कि आपको 5 बीघा जमीन दे दें तो हम कहेंगे हमें जमीन नहीं, हमें क्या चाहिए? पैसा. तभी देखिए अकाउंट में, अभी आपने देखा होगा एक स्कीम थी सब GS में, तो आप लोग पढ़ते ही होंगे मेरे ख्याल से, एक श्रम पोर्टल बना है ना, और उसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ना, ई श्रम पोर्टल, और जो कितना था बेटा, 500 रुपीस जमा करना था, मिलेगा. और इसमें शायद अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर किया है ना, ध्यान रखिएगा. ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब वो होता है जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है, फैक्ट्री वगैरह, और अनऑर्गेनाइज जैसे अपने यहाँ मेट्स वगैरह आती हैं, या ये जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, इनको लिए बहुत अच्छी स्कीम लगाया है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स को भी एक मेरे ख्याल से इंश्योरेंस के डोमेन में कि एक रजिस्टर्ड हो जाएं ये लोग, कभी भी इनको देना पड़े सरकार को इस तरह के लॉकडाउन पीरियड में, तो सरकार की दिक्कत क्या आई थी, कि पैसा किसको दे दें, कौन है, सब कहें हम भी मजदूर हैं, पर वो जो मजदूर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, उसका कोई रजिस्ट्रेशन, इसीलिए बहुत अच्छा काम किया कि एक ई श्रम पोर्टल शायद था उसमें था, शायद 31 तक, तो अभी तक था दिसंबर तक, उसमें रजिस्टर्ड करा ले तो उस बंदे को 5 लाख तक का शायद वो देंगे इंश्योरेंस मेडिकल फ्री, और फिर कुछ बेनिफिट्स शायद 500 या जो भी, मतलब ठीक है जो भी है, तो
1000 है,
1000 रुपये है शायद, मतलब जो भी हो, सरकार इन सब, असल में सरकार की क्या प्रायोरिटी है इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि सबको एक नंबर या एक रजिस्ट्रेशन मिल जाए ना, तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी या कुछ डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहती, तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि डायरेक्ट बेनिफिट आपको किस में दे, सीधे आपके अकाउंट्स में दे, जिससे बीच का चेन हट जाए, और बीच के चेन में ही क्या होता था, बहुत मिसयूज हो रहा था, इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट के चक्कर में देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे ख्याल से सबसे बड़ा सेक्टर होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि ऑर्गेनाइज तो कम है, ज्यादा किस में है अनऑर्गेनाइज, देखिए डेली वेजेस के लोग आते हैं, अपने आप साफ सफाई करने वाले जो क्लीनिंग वाले लोग हैं ये लोग आते हैं, इन सबको रजिस्ट्रेशन के लिए एक ई श्रम पोर्टल है, तो वो बहुत करेंट जीएस का क्वेश्चन होगा, उनको सेवा के लिए उनका जो सरकार भी रिकॉग्निशन उनको देना चाह रही, इसीलिए एक श्रम पोर्टल पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है। चलिए हाँ, सर्विस लैंड हो गया,
इसका और पढ़ें सबसेक्शन 4
इंपॉर्टेंट है, देख उन्होंने तो छोड़ दिया।
सर जो नॉन हेरिटेबल है सर, वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है?
नॉन
हेरिटेबल,
अच्छा ये बेटा ऐसा शब्द नहीं लिखा, पर यही जो 183 में था इसी में देखिए लिखा था ना कि उनकी डेथ हो जाने के बाद, डेथ हो जाने के बाद उनका जो ऑफिसर इन सक्सेशन, कौन सा क्लास था, 3 था,
सबसेक्शन 3
183 के सबसेक्शन 3 में था, 183 MPLRC का सबसेक्शन 3 में था कि डेथ होने पे कोटवार के जो नेक्स्ट कोटवार होगा ऑफिस में आएगा उसको ये मिल जाएगा, ये उसको मिलेगा, ना कि ये हेरिटेबल है, हेरिटेबल का मतलब उसके बच्चे नहीं पाएंगे। ठीक है, और चलिए
एक सेकंड, चैप्टर 14 रिपीट हो चुका है,
बहुत अच्छा, ऑक्यूपेंसी टेनेंस
202, हाँ ऑक्यूपेंसी टेनेंस,
मौरूसी कृषक, हिंदी में क्या बोलते थे, मौरूसी कृषक, ये अब डिलीट हो गया, बहुत अच्छा है, और
202 तक डिलीटेड है। अब हम लोग का चालू होगा एल्यूवियन, चैप्टर 15 एल्यूवियन एंड डिलुवियन,
एल्यूवियन एंड डिलुवियन, जब कटान जिसको कहते हैं ना, जो लोग जिनकी जमीनें गांव में जो सुनते होंगे, जिनकी नदी के किनारे होती है, तो कभी कभी आप देखिए नदी या तो देखिए एक एक फ्लो में तो रहती नहीं है, एक शुद्ध भाषा में जो लोग हिंदी में जाते होंगे कहते हैं ना, गंगा नदी कटान बहुत करती है, कभी देखिएगा उसके बैंक्स जो है वो शिफ्ट होती है, कभी इधर तो मान लीजिए एक ओर से शिफ्ट हो गई तो जिस ओर चली गई उनकी तो जमीन पानी में गई, और जिधर छोड़ दिया उधर खाली हो गया। तो अक्सर देखिएगा, मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर है बक्सर ना, वो बलिया है और उधर बक्सर है, बीच में संभवतः गंगा नदी है, गंगा नदी के दोनों ओर, एक ओर उत्तर प्रदेश है एक ओर और एक ओर बिहार, खूब लड़ाई होती है इसको लेके, लैंड डिस्प्यूट बहुत है, क्यों, क्योंकि इधर से गंगा थोड़ी शिफ्ट हो गई, इधर वालों को मिल गई, उधर वाले की चली गई, तो यही है एलुवियल एंड फेलुवियल, तो एलुवियल माने बढ़ जाना, फेलुवियल माने घट जाना, तो डिलुवियल, डिलुवियल, तो जब घट जाएगा तो भाई जब हमारा बढ़ेगा तो क्या हमें एक्स्ट्रा लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा, तो अगर देना भी पड़ेगा तो एक मिनिमम हेक्टेयर लैंड बढ़े तभी देना होगा, हाफ हेक्टेयर है कितनी है भी पढ़ेंगे, और घटेगा तो बट ऑब्वियस ही बात है हमारा रिडक्शन होना चाहिए ना लैंड रेवेन्यू, जितनी हमारी जमीन थी कम हो गई तो हमारा घट जाए, तो इसी को एल्यूवियल और डिल्यूवियल बोलते हैं। बताइए
चैप्टर 15 203 सेक्शन एल्यूवियन एंड डिल्यूवियन सब सेक्शन 1 एलुवियल लैंड फॉर्म्ड ऑन एनी बैंक शैल वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट बट द भूमि स्वामी इफ एनी ऑफ द लैंड एडज्वाइनिंग सच बैंक शैल बी एंटाइटल्ड टू द यूज ऑफ द एलुवियल लैंड सो एडेड टू हिज होल्डिंग फ्री फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड रेवन्यू टिल द लैंड सर्वे इज अंडरटेकन Unless the area added to his holding exceed half hectare.
ठीक है, कह रहा है कि जो एलुवियल एक्शन से बढ़ गई जमीन पे, वो भाई बढ़ी है वो तो सरकार की ही होगी, मगर उसको इंजॉयमेंट जो रिवर बैंक पे जिसका था जमीन, जो भूस्वामी है उसी का इंजॉयमेंट वो करेगा, लैंड रेवेन्यू जब एसेस होगा तब देगा, मगर जनरली हाफ हेक्टेयर से अगर कम आया है तब लैंड रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हाफ हेक्टेयर की बात की गई है। और चलिए
चैप्टर 16 कंसोलिडेशन ऑफ
होल्डिंग भी तो रहा होगा,
सब सेक्शन 2 इसका पढ़ देते हैं। वेयर एनी होल्डिंग इज डिमिनिश्ड इन एरिया बाय डिलुवियन टू एन एक्सटेंट ग्रेटर देन हाफ हेक्टेयर द लैंड रेवेन्यू पेबल ऑन सच होल्डिंग शैल बी रिड्यूस्ड।
ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या रहा, हाफ हेक्टेयर, यानी प्रिलिमिनरी के लिए सेक्शन 202 है ना, कौन सा है,
303
है, इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज रही एलुवियल और डिलुवियल, एलुवियल माने बढ़ना, डिलुवियल माने घटना, बढ़ेगी तो सरकार की होगी, घटेगी तो हमारा नुकसान होगा, हाफ हेक्टेयर से ज्यादा बढ़े या घटे तभी लैंड रेवेन्यू उसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए
सेक्शन 204 पे भी लगा दीजिए निशान, पावर टू मेक असेसमेंट एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स कौन करेगा, ये सब डिविजनल ऑफिसर, बस ये इसी पे लगा लीजिए निशान।
इसके बाद देखिए हम लोग पढ़े थे ना एक उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, याद है सबको, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट पढ़े थे, यानी यूपी एलआरसी उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड का चकबंदी यानी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग पार्ट नहीं था, मगर मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, जो कंसोलिडेशन का प्रोविजन है वो भी किसमें डाल दिया गया है, लैंड रेवेन्यू को, तो एमपी एलआरसी का पार्ट बन जाता है कंसोलिडेशन, चकबंदी का क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, रेक्टेंगुलेशन कैसे होगा, ये देखिए 204 से कहां तक है, नहीं बेटा लंबा चैप्टर होगा, 221 तक था, अब देखिए 205 से लेकर 221 तक कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है, इसको कभी ऐसे ही जैसे मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, हम इसको फिलहाल पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, तो इसको बस इतना जान लीजिए कि जो चकबंदी हम लोग अलग पढ़ते थे वो इसी का पार्ट है, कभी कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा प्रिलिमिनरी में तो इसमें देख लीजिएगा, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी कुछ टॉपिक्स हैं तो वो हम लोग टेकअप करने चले। हाँ चलिए आगे
चैप्टर 17 विलेज ऑफिसर,
अब आगे वो
ए पटेल,
पटेल सरदार पटेल वाला, देखिए पटेल वहाँ का काम अमीन, अपने आप सुने थे ना रेवेन्यू ऑफिसर में कौन होता है, लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है उत्तर प्रदेश में, अमीन, क्या नाम होगा, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू वेस्ट इन अमीन, एक अमीन नामक एक होता है सबसे लोएस्ट में आता अमीन, और यहाँ पर उसी अमीन को जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसी अमीन को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, पटेल, मध्य प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र में भी जाएंगे तो पटेल, उधर सौराष्ट्र रीजन में भी पटेल ही कहलाता है, तो पटेल कभी कभी एक तरह का एक वो हुआ करता था रेवेन्यू ऑफिसर, तो इसका पटेल का काम क्या होता है, टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड ऑनेस्टली डिपॉजिट इट इन अ स्टेट एक्सचेकर, अगर ऐसा नहीं करेगा रिसिप्ट नहीं देगा कलेक्ट करने के बाद भी तो इसको हटाया जाएगा और पेनाल्टी लगाया जाएगा, तो अब देखते हैं विलेज ऑफिसर के रूप में बताइए पटेल,
पटेल सेक्शन 222 अपॉइंटमेंट ऑफ पटेल सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू रूल्स मेड अंडर सेक्शन 258 द कलेक्टर मे अपॉइंट फॉर ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस वन और मोर पटेल्स।
कौन अपॉइंट करता पटेल को, कलेक्टर, बस ये अंडरलाइन करिए, हु अपॉइंट द पटेल्स, कलेक्टर, ठीक है।
सब सेक्शन टू, व्हेन देयर आर टू और मोर पटेल्स इन अ विलेज द कलेक्टर मे डिस्ट्रीब्यूट सब्जेक्ट टू रूल्स मेड अंडर सेक्शन 158 ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ पटेल इन सच मैनर।
वो इम्पोर्टेंट नहीं, बस ड्यूटी अब बता दीजिए, पटेल को अपॉइंट कौन करता है, कलेक्टर, इसका काम ही होता है अमीन वाला यानी लैंड रेवेन्यू रिकवर करना। देखिए होगा ड्यूटीज ऑफ पटेल,
ड्यूटीज ऑफ पटेल सेक्शन 224। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पटेल ए टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड अदर रिलेटेड टैक्सेस एंड सेस पेबल थ्रू हिम एंड सच अदर गवर्नमेंट ड्यूज ordered to be collected through him after deducting the collection charges as may be determined by the state government from time to time and pay into the government treasury।
तो ध्यान रखिए पटेल का काम क्या होता है, पटेल को अपॉइंट करते हैं कलेक्टर एंड देयर मेन टास्क इज टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, तो इनका काम ही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा, बस इतना जानना, इससे ज्यादा नहीं जानना। और नीचे चलिए
बी, टू फर्निश रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ हिज विलेज एट सच प्लेसेस एंड टाइम एज द कलेक्टर मे फिक्स इन दिस बिहाफ,
ठीक है।
सी, एज फार एज पॉसिबल टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑन वेस्ट लैंड पब्लिक पाथ्स एंड रोडवेज इन द विलेज,
ठीक है।
डी, टू प्रिजर्व सच स्टेशन एंड बाउंड्री मार्क्स erected in his village by surveyors in the service of government as may be made over to his care and to report and damage any damage caused to such remarks।
छोड़ दीजिए बाकी लोग पढ़ लेंगे, duties आप पटेल पढ़ लीजिएगा, general है 224 में। हाँ, next penalties देखिए होगा।
अच्छा, removal of पटेल, next है collector ही remove भी करेगा,
जो appoint करेगा उससे नीचे का 30 तो पढ़े हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, द अथॉरिटी विच अपॉइंट यू लोअर रैंक का रिमूव नहीं कर सकता है, सस्पेंड तो कर देगा, पढ़े होंगे ना 311 ना, आर्टिकल 311, बहुत याद आता है कॉन्स्टिट्यूशन, मन करता है कि अब बहुत दिन हो गया, अब अपने मेजर एक्ट पे आए, बहुत दिन से ये लोकल लॉ माइनर पढ़ा रहे हैं, आएंगे ही। हाँ चलिए,
पनिशमेंट ऑफ पटेल,
हाँ पटेल को पनिश,
लाइबल एंड ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार टू फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज, इतना लगा
निशान कर लीजिए
क्योंकि यही पूछेगा प्री में,
प्री में आएगा कि अगर पटेल ने पैसा इकट्ठा कर भी लिया और जमा नहीं किया या वो सब रसीद उसीद नहीं दिया तो फिर कितना तहसीलदार इसके ऊपर कितना इम्पोज करेगा,
1,000 रुपीज।
चलिए इसके बाद देखिए,
अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड पटेल, नहीं ये प्री के लिए है,
ये भी आया
सब्स्टिट्यूट पटेल कौन करेगा, सब डिविजनल ऑफिसर।
अच्छा, सब्स्टिट्यूटेड पटेल को देखिए, पटेल को कलेक्टर और सब्स्टिट्यूटेड पटेल को SDO, ठीक है।
ठीक है, अब आ जाइए 230 पे, कोटवार,
कोटवार हमने कहा था ना, कोटवार को कौन सी जमीन, कोटवार किससे रिलेटेड है, सर्विस लैंड। कोटवार हमने क्या कहा था, एक दिमाग में रखा करिएगा कि कोटवार मतलब विलेज चौकीदार, तो विलेज ऑफिसर में देखिए पहला आपने पटेल पढ़ा और दूसरा कोटवार, ठीक है बता दीजिए।
सेक्शन 230, अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार एंड देयर ड्यूटीज, सब सेक्शन 1, फॉर ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस there shall be appointed in accordance with the rules made under section 258 one or more kotwars for the performance of such duties as may be prescribed।
ठीक है, तो कोटवार का अपॉइंटमेंट किया जाता है, कौन करेगा, 258 में है, छोड़ दीजिए, और इसकी ड्यूटी जो मैंने बताया था एक तरह से देखिए लिखा हुआ ड्यूटीज, विलेज चौकीदार टाइप होता है ये।
सब सेक्शन 2, एवरी पर्सन हु एट द कमिंग into force of this code holds the post of a village watchman in the Bhopal and Sironj regions or a chaukidar in the Vindh Pradesh region shall be deemed to be a kotwar under this section।
तो मोटा मोटा कोटवार का क्या काम होता है, विलेज वॉच मैन, और पटेल का काम टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया।
सेक्शन 231, रेमुनरेशन ऑफ कोटवार,
वही सर्विस लैंड से लेता, छोड़ दीजिए।
चैप्टर 18 राइट इन आबादी राइट्स इन आबादी एंड अनऑक्युपाइड लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस
अनऑक्युपाइड लैंड एक नया नाम आ रहा है अनऑक्युपाइड लैंड ऐसी लैंड जो किसी के कब्जे में ना हो वेस्ट लैंड ना रेजिड्यू लैंड ना तो अनऑक्युपाइड लैंड पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे अब ये लास्ट टॉपिक है मगर अब जो पढ़ाने चल रहे हैं वो तो हर बार आना है ये जो लास्ट का है ना अभी निस्तार पत्रक और वाजिबुल अर्ज आप उठा के देख लीजिए मध्य प्रदेश कभी छोड़ता ही नहीं पूछना तो ये जो लास्ट में अब जो पढ़ाने चल रहे हैं बेटा ऑनलाइन भी ना जो लोग स्लीपिंग मोड पे थे अब अवेकनिंग मोड पे आ जाओ क्योंकि अब ये जो आ रहा है ये तो नेसेसरी क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का आप चाहें तो प्री और मेंस का पेपर उठा के देख लीजिएगा लेटेस्ट भी चलिए अब अलर्ट होके पढ़िए हाँ
सेक्शन 233 रिकॉर्ड ऑफ अनऑक्युपाइड लैंड अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल अनऑक्युपाइड लैंड शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी विलेज एंड अर्बन एरिया इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड इन दिस बिहाफ
रुकिएगा अनऑक्युपाइड लैंड की डिफिनीशन 2W कुछ था ना देखिए
2Z3
2Z3 जरा पहले डिफिनीशन तो इसकी देखिए 2Z3 सेक्शन 2Z3 सेक्शन 2Z3 चलिए इसी से एक और चीज याद आ गई अभी बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग चीज क्योंकि बहुत अच्छा इस समय काम सरकार देखिए अपना नई नई उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं तो हम सब जानते हैं जैसे शहर की हमारे मकान उकान मैंने कहा था ना उनके लिए आप सबके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो है ना हम लोग मॉर्गेज कर सकते हैं अच्छा गांव में हमारा मकान है तो उसका कोई नंबरिंग नहीं होता ना गांव की आबादी साइड में कोई नंबरिंग वहां नहीं है कि मकान नंबर 8 फलाना तो अब क्या किया है बहुत ही जल्दी इसको सबको ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ के जो अपनी उत्तर प्रदेश में गांव में आबादी के मकान है उनको भी असेसमेंट करके क्या देने जा रहे हैं नंबरिंग अब इसके बाद क्या होगा ना कि ये जो बैंकिंग बिजनेस बहुत तेज से फ्लोरिश होगा कोऑपरेटिव क्यों क्योंकि फिर गांव में भी लोग क्या ले लेंगे भाई जरूरत है कारोबार के लिए तो गांव का तो कोई सिक्योरिटी मान्य नहीं होता था गांव के मकान में कोई नंबरिंग नहीं थी अब सब उसको करने जा रहे हैं अब वो क्या है मैं नहीं जानता हूं मगर भू अभिलेख में आने जा रहा है वो कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कि जो हमारी गांव की मकान है आबादी साइड में वो भी अब एक अच्छी सिक्योरिटी मानी जाने लगेगी और जो ये NPA है जितना बैंक का ना बहुत कम हो जाएगा अगर गांव का भी उसको ले लिया जाए लोनिंग पे तो अच्छा काम होगा बिजनेस अच्छा बढ़ेगा तो अब सरकार उत्तर प्रदेश की मुझे अभी कोई बता रहा था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि अब उसका भी असेसमेंट बहुत तेजी से कर रहे हैं कि उन मकान को भी एक नंबर अलाट कर दिया जाए जिससे उसको एक बुक दे देंगे और फिर वो उस पर बैंक लोन वगैरह हो सकता है और डिस्प्यूट भी काफ़ी कम हो जाएगा तो चलिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सेक्शन 2Z3
अनऑक्युपाइड लैंड मीन्स द लैंड अदर देन द आबादी और सर्विस लैंड और द लैंड हेल्ड बाई अ भूमि स्वामी और अ गवर्नमेंट लीसी
यानी कह रहा अनऑक्युपाइड लैंड कौन सी है जो भूमि स्वामी की नहीं है गवर्नमेंट लेसी की नहीं है इनके अलावा जो बची हुई जमीन है उसको हम लोग क्या कहेंगे अनऑक्युपाइड लैंड ना और अनऑक्युपाइड लैंड वो जो खाली जमीन है उसी जमीन के लिए एक निस्तार पत्रक नाम आएगा अभी देखिए आने जा रहा है वो एक पत्रक बनता है SDO बनाता है उसको कहते हैं निस्तार पत्रक और निस्तार पत्रक में किस जमीन की बात की जाएगी किसके लिए वो पत्रक बनता है अनऑक्युपाइड लैंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए बताते चलिए
234 सेक्शन 234 पे आ जाइए
मोस्ट इंपॉर्टेंट है
प्रिपरेशन ऑफ निस्तार पत्रक निशान लगाइए द सब डिविजनल ऑफिसर
पकड़ लिया आपने निस्तार पत्रक में किस लैंड के बारे में रहता है अनऑक्युपाइड लैंड और कौन इसको प्रिपेयर करता है SDO मध्य प्रदेश प्री निकला समझिए अब रिजर्वेशन मेंस के लिए कराइए आप लोग
क्वेश्चन ये रहेगा कि निस्तार प्रिपेयर निस्तार पत्रक, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, फिर उसके बाद
अच्छा पटेल, इतने के बाद भी ना क्वेश्चन बता दिए उसके बाद भी गलत करके आते हो ना,
पटेल कोटवार,
क्यों? क्योंकि हम ही लोग घामड़ भी हैं, एक शब्द आता है
फिर वहां पे जो है प्रॉब्लम,
तो
क्या
बताने है? के बाद भी जब गलत कर जाए तो मिंटास खिलाओ और अपने आप को वो नाम जो मैंने भी यूज किया, हमारी भोजपुरी भाषा में घामड़ कहते थे, घामड़ समझ गए ना? नहीं जानते हो? मूर्ख जिसको कुछ नहीं करना आता है, मूड तो बहुत ही रिफाइंड भाषा है, जो मेन भाषा है गोरखपुर साइड में घामड़ हो क्या, एकदम गाड़ी भी नहीं चलाना आता लेके स्टेरिंग घूम रहे हो, काटना तो सीखो, क्यों लाइटें जलाना सीखे हो, तो उसको घामड़ कहते हैं ना हमारे साइड में ना, हम मूलतः गोरखपुर के हैं तो वहां पे ना अच्छी भाषा मतलब क्या है ना कि मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज से बात करिए, जितना अच्छा एब्यूज देंगे ना उतना ही घनिष्ठता दिखेगी। आप कभी अपने चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, सॉरी टू से यू आउट ऑफ कैमरा, पता लग जाएगा आपको। तो मैं चूंकि वो हमारे कल्चर का पार्ट है, इसीलिए हमारे यहाँ जब डिफेमेशन पढ़िएगा आप लोग टॉट में, तो सिंपल एब्यूज इज नो डिफेमेशन अनलेस करेक्टर हैज बीन डिफेमेड, याद है ना? ध्यान रखिएगा, हर चीज के साथ एक क्वेश्चन जोड़िए, सिंपल एब्यूज इज नो डिफेमेशन अनलेस करेक्टर ऑफ अ पर्सन हैज बीन असैसिनेटेड, जब तक करेक्टर यानी किसी के खासतौर से महिलाओं के करेक्टर से रिलेटेड ना बोला जाए तब तक भारत में कहा गया है लॉ डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ट्रिफल्स, सेक्शन 95 आईपीसी, छोटी छोटी बातों का कानून संज्ञान नहीं लेता है, तो ये छोटी छोटी बातें भारत में। हाँ बताओ।
प्रिपरेशन ऑफ निस्तार पत्रक, द सब डिविजनल ऑफिसर शैल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एंड द रूल्स मेड देयर अंडर प्रिपेयर निस्तार पत्रक फॉर एवरी विलेज एम्बेडिंग अ स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल अनऑक्युपाइड लैंड इन द विलेज, किसके लिए तैयार करता है? तो ये भी एक क्वेश्चन आता अनऑक्युपाइड लैंड के लिए।
अरे कुल मिला के निस्तार पत्रक फॉर अनऑक्युपाइड लैंड और SDO प्रिपेयर करता है। और चलिए
235 सेक्शन मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन निस्तार पत्रक,
क्या क्या होगा निस्तार पत्रक में बताइए।
द मैटर्स विच शैल बी प्रोवाइडेड फॉर इन निस्तार पत्रक शैल बी एज फॉलोज, नेमली ए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन द विलेज विल बी परमिटेड, B. The terms and condition on which and the extent to which may any resident may obtain number first wood, timber, fuel or any other forest produce, second morum, kankar, sand, earth, clay, stones or any other minor
minerals ज्यादा होते हैं, मोरंग उरंग है ना।
C. Instructions regulating generally the grazing of cattle and the removal of the articles,
यानी ये लैंड कैसी है, याद है जो हम लोग पढ़े थे अपने यहाँ, अगर याद हो आप सबको, हमने कहा था एक 59 वाली लैंड होती है, एक 177, यानी एक जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उस पर तो लीज दे दिया सरकार ने, और ये लैंड कैसी है नॉन एग्रीकल्चरल ना, जैसे वेस्ट लैंड, पार्शियल लैंड, इसको मेन क्या बोलते हैं, पार्शियल लैंड, तो वही है, ये पार्शियल लैंड है, फोर्डर लैंड है, जंगल बहुत होते हैं मध्य प्रदेश में, तो वहां से लकड़ी उकड़ी तोड़ के लाने का राइट, तो ये सब इसी निस्तार पत्रक में लिखा जाता है कि ये पर्टिकुलर लैंड है, इस ये अनऑक्युपाइड लैंड है, ये इस पर्पज के लिए यूज होगा। और इसी में देखिए अभी कस्टम्स भी आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पढ़ रहे थे।
See, instructions regulating generally the grazing of cattle and the removal of article mentioned in paragraph B, D, any other matters required to be recorded in the Nistar Patrak by or under this code.
ठीक है।
Section 236, provisions in Nistar Patrak for certain matters. In preparing the Nistar Patrak as provided in section 235, the collector shall as far as possible make provision for a free grazing of the cattle used for agriculture, बी रिमूवल फ्री ऑफ चार्ज बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज फॉर देयर बोनाफाइड डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेकेंड माइनर मिनरल्स.
ठीक है, माइनर मिनरल्स डोमेस्टिक पर्पज के लिए आप ले सकते हैं.
सी द कंसेशंस टू बी ग्रांटेड टू द विलेज क्राफ्ट्समैन फॉर द रिमूवल ऑफ द आर्टिकल्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ देयर क्राफ्ट.
ठीक है.
सेक्शन 237 कलेक्टर टू सेट अपार्ट लैंड फॉर एक्सरसाइज ऑफ निस्तार राइट्स.
ठीक है.
सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस कोड द कलेक्टर मे सेट अपार्ट अनऑक्युपाइड लैंड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज नेमली ए फॉर टिम्बर और फ्यूल रिजर्व बी फॉर पॉस्चर ग्रास बीर और फॉर्डर रिजर्व सी फॉर ब्यूरियल ग्राउंड ऑफ क्रिमेशन ग्राउंड डी फॉर गांव थान ई फॉर कंपेनिंग ग्राउंड इन कैंपिंग ग्राउंड सॉरी एफ फॉर थ्रैशिंग फ्लोर जी फॉर बाजार एच फॉर स्किनिंग ग्राउंड आई फॉर मैन्योर पिट्स जे फॉर पब्लिक पर्पज सच एज स्कूल प्ले ग्राउंड पार्क रोड लेन्स ड्रेन्स एंड द लाइक.
यानी अनऑक्युपाइड लैंड में कलेक्टर इन इन चीजों के लिए उस अनऑक्युपाइड लैंड को यानी निस्तार पत्रक में से निस्तार करेगा. निस्तार माने एंड है ना, डिस्पोजल बोलते हैं ना, तो डिस्पोज ऑफ करेगा इन इन चीजों के लिए कलेक्टर अलॉट कर देगा. बस इतना याद रखना. और चलिए कितना बजा
अभी हुआ 2:06:12.
अरे बस हम लोग विदिन टाइम है.
सेक्शन 240 प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग ऑफ सर्टेन ट्रीज इन विलेजेस. सब सेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोहिबिट और रेगुलेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन विलेज स्टैंडिंग ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू भूमि स्वामी और स्टेट गवर्नमेंट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट सच प्रोहिबिशन और रेगुलेशन इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट और रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ सॉयल.
ठीक है. सॉयल इरोजन मेन ट्री का काम क्या होता है? सॉयल इरोजन है ना. तो कह रहा है अगर सरकार को लगता है सॉयल इरोजन के लिए नेसेसरी है. अभी हमने 180 भी पढ़ा था. 180 प्लस 240 ना 40 नहीं 240 है ना. हाँ 180 प्लस 240 देखिए. तो अगर कहा जाए कि डिफॉरेस्टेशन को रोकने का प्रोविजन देखा जाए तो दो सेक्शन में है ना. 180 प्लस 240 में प्रोहिबिट किया है कि अगर सॉयल इरोजन का कुछ मामला है. क्योंकि देखिए सॉयल इरोजन का मामला मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. कोई बता सकता है क्यों? हाँ बताओ बेटा. लैंड सॉयल का फॉर्मेट. हाँ ऑनलाइन बेटा हो तुम लोग लाइन पे? मतलब सुन रहे हो ना? हाँ बेटा हमको लगा कि सब भाग गए. कोई नहीं. सॉइल इरोजन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ मध्य प्रदेश. क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी जो उत्तर प्रदेश की लैंड है ये एलिवेशन इसका कम है. यानी जो उत्तर प्रदेश की लैंड है आप देखिए एक लेवल लैंड है. मगर आप अगर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जाएं तो मध्य प्रदेश में अप एंड डाउन पठारी रीजन है. पूरा जो अरावली का रेंज है ना आप जाके देखिए तो अप एंड डाउन बहुत. इसीलिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर ज्यादा तो ईस्ट फ्लोइंग है. ज्यादातर नदियां किधर जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाती है ना. और ये डेल्टा फॉर्मेशन करती है गंगा उंगा. और जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो पश्चिम घाट के यानी हमारे पश्चिम यानी गुजरात की ओर जाती है ना अरब की सागर बोलेंगे अरेबियन सी जाएगी. इनमें क्या होता है ना इसमें ना वो स्टीप बहुत है ढलान बहुत है. तो जब फ्लो बहुत होता है तो देखिए नर्मदा में फ्लो बहुत है. मैंने बार बार कहा है वहां देखिए ऐसे सिंपल नाव नहीं चलती. वो गोल गोल एक गोल गोल सी डोलची टाइप की बनाते हैं. वहां पे वाटर करंट बहुत है नर्मदा में. तो फ्लो इतना तेज है कि अगल बगल के गांव को क्या कर देती है वो कटान हो जाती, इसीलिए उस कटान को रोकने का मात्र एक सहारा है, वो है प्लांटेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए। अच्छा, पेड़ से कैसे सॉइल इरोजन रुकता सब जानते होंगे ना, साइनपी के जड़ें अंदर तक जाती हैं और कैचमेंट बना देती है ना, कसके कैचमेंट बनाती, इसलिए बांध उंध पे देखिए हमेशा पेड़ लगा दिए जाते हैं। क्यों? बांध पे क्या होता है, जो डैम्स होते हैं डैम पे भी मिट्टी से ही बना है, तो इसीलिए उस पर पेड़ लगा दो तो उससे क्या होगा, कैच। ये बहुत साइंटिफिक है चीज़ें। तो वहाँ मध्य प्रदेश में इसीलिए सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम, मैंने कहा था ना आप लोग ज्योग्राफी में देखिएगा, जो ईस्ट फ्लोइंग लैंड है, रिवर्स हैं, वो तो डेल्टा बनाती हैं, बड़ी बड़ी चौड़े चौड़े मैदान छोड़ती हैं, बीच में से कट जाती हैं, इतना फर्टाइल लैंड है। और जो ये वेस्ट फ्लोइंग लैंड है, नर्मदा तापी है ना, इन्हीं को बोलते हैं ना, ये इस्चुरी बनाती है ना, ये एकदम स्टीप, ऐसे कहीं सीधे धप से नीचे गिर जाएंगे। आप जाके देखिए ना गोवा वा साइड में जाइए, वहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल मिलेंगे आपको। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश या कभी सुना पश्चिम बंगाल में वाटरफॉल, लॉजिक है, क्यों? क्योंकि ढलान है ही नहीं, बहुत हल्का हल्का धीरे धीरे जाती, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें फ्लो भी नहीं है। और वही आपका जितना वेस्ट बैंक है, इसको जियोग्राफिकली साइंटिफिकली देखिए ना, जितना हमारा वेस्ट बैंक है यानी अरबियन सी, उधर आ जाइए सौराष्ट्र का रीजन, जितना ये पाल घाट, जितने घाट है ना, वेस्टर्न घाट कहाँ पे है सुनेंगे ना, वेस्टर्न घाट ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी तो महाराज पढ़ डाली आप लोग, कोई फॉरेन का ज्योग्राफी नहीं, इंडियन ज्योग्राफी मतलब, जैसे हम लोग इतना हम लोग बचपन से इतना घामड़ रहे हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश के अलावा वो साउथ में है, सब साउथ में है, मतलब चाहे वो बंगलौर भी हो तो कहें अरे वो तो साउथ में है, इडली सांभर वाले साउथ इंडियन तो पूरा साउथ ही हो गया। और हम लोग याद है कोई भी, अरे वो सब तमिल वाले हैं, अरे तमिल ही नहीं, वहाँ तेलुगु भी हैं, मलयालमी भी हैं, और इनको बंगलौर वालों को क्या बोलते, कौन सी कन्नड़ी, हाँ कन्नड़ है ना, हाँ ये सब अलग अलग रीजन है। तो साउथ में भी बहुत बड़े बड़े रीजन है। तो ध्यान रखिए जो पश्चिम घाट की ओर यानी वेस्ट फ्लोइंग, जो पश्चिम की ओर नदियां जाके, देखो नदी हमेशा समुद्र में ही मिलती है ना, तो एक हमारे ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में जो मिलेगी उसको ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ईस्ट की ओर जाने वाली, और जो पश्चिम यानी वेस्ट की ओर जाएंगी उन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नर्मदा और तापी का नाम मेन है। और ये जो वेस्ट फ्लोइंग है आप कभी भी एटलस में देखिएगा तो उनमें बहुत ज्यादा स्टीप ढलान है, एलिवेशन बहुत है, तो बहुत स्पीड होगी, जब स्पीड होगी तो रास्ते को काटते कूटते चले जाते हैं, इसीलिए इधर फर्टिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको देखिएगा एग्रीकल्चरल लैंड इस साइड गुजरात साइड में नहीं होगी, आप देखते होंगे ज्यादातर रेगिस्तान सब वेस्ट होता है, क्यों नहीं रेगिस्तान वेस्ट बंगाल में है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्टाइल लैंड है। रेगिस्तान हमें किधर मिलता है, हमारे डेजर्ट्स किधर हैं, हमेशा वर्ल्ड में देखिएगा डेजर्ट वेस्ट साइड होगा, ईस्ट साइड, इसीलिए मकान भी जब बनाते हैं तो कहते हैं ईस्ट फेसिंग मिल जाए, क्यों, ईस्ट फेसिंग ठंडा होगा, वेस्ट फेसिंग कैसा होगा, बस ऑब्वियसली बात है वो सूखा रहेगा। तो हमारा भी हिंदुस्तान का जो पश्चिम घाट है वो सूखा है, और जो पूरब का घाट है ये बंगाल उंगाल का साइड देखिए ना, ये कलिंगा रीजन जितना उड़ीसा बंगाल का देखिए, भरा हरा भरा पानी है, पानी है उधर कलिंगा रीजन, जितना कलिंग रीजन है, कलिंग रीजन कौन सा कहलाता है, वो उड़ीसा वाले ना, पढ़े होंगे ना, ऐसे देखिए ज्योग्राफी का मैप देख लीजिए बहुत ईजी। तो इसी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए 240 में फिर आ जाए तो जरूर देखिएगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर वाई मेट इश्चुरी, क्यों वो स्ट्यूरी यानी एक तरह ढेर सारा निकलेगा और आप वाटरफॉल जितना भी होगा, ये आप देखिएगा ये कर्नाटक और गोवा साइड में ही वाटरफॉल है, बहुत वाटरफॉल है, पानी ऊपर से गिरता है, और ईस्ट साइड में वाटरफॉल ना के बराबर हैं। तो आ जाइए अंकित सर, हाँ वेस्टर्न घाट जरूर पढ़ लीजिएगा, पाल घाट पोर घाट भी एक और घाट, तीन घाटों को मिलके वेस्टर्न घाट बनता है ना, जो हमारा महाराष्ट्र से लेकर और वो केरल तक जाता है ना, जितना कोस्टल रीजन उसको हम लोग कौन सा घाट बोलते हैं उसको, उधर वेस्टर्न घाट, और जो बंगाल से कलिंगा वाला रीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट, और नीचे का तमिलनाडु है, जो नीचे टिप है वो इंडिया का क्या कहलाएगा, तमिल, और आप अगर ऐसे सामने इंडिया का रखिए मैप, तो लेफ्ट हैंड पे जो आपका आएगा वो वेस्टर्न घाट है, और राइट हैंड पे जो आएगा वो ईस्टर्न घाट। बस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, जितना सुंदर वन वन है जहाँ पे मेन लायन रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं, वो सब ईस्टर्न घाट का है ना, बहुत सुंदर जगह है, मडी लैंड्स है, सब बहुत अच्छी जगह है। तो ये सब देख के आप इंडियन ज्योग्राफी बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, ना हो तो एनसीईआरटी। हाँ ये बहुत अच्छा बताया, वही मैं बताया, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों आके मिलते हैं नीलगिरी, और नीलगिरी हिल्स पे ही आप सबको याद होगा हमारे सीडीएस का अभी एक्सीडेंट हुआ है, नीलगिरी हिल्स पे ही तो उनका एक्सीडेंट हुआ है। जो वो नीलगिरी हिल्स में आप जाइए ना, आप कभी भी जाके उधर देखे ना, वो कौन सी जगह है जो यार चेन्नई में वो जो
कोडाईकनाल,
आप ऐसे खड़े रहेंगे अचानक देखेंगे बादल आ जाएगा आपके नीचे से तुरंत। अच्छा बादल तो आप कहेंगे सर हमें नैनीताल में भी दिखता है, दिखेगा, बट ऑल ऑफ सडननेस और लैंड का पेट्यूलेंट यानी प्लेट्यू है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है, वहीं पे तो उनका एक्सीडेंट हुआ है। अचानक उनका बहुत नीचे एलिवेशन पे हेलीकॉप्टर चल रहा था, अचानक ऊपर से क्या आ गया बादल, और जरूर लाइटनिंग हुई और किसी पेड़ पाड़ से टकरा गया। इसी तरह बहुत पहले भी एक कांग्रेस के लीडर जगमोहन रेड्डी थे, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे,
आंध्र प्रदेश के जंगलों,
मतलब वहां की स्थिति यही है। तो अब मगर ये नीलगिरी हिल्स के साथ प्रॉब्लम है, एक अचानक बादल आता है, और उसी नीलगिरी हिल्स पे ही हमारे जो फॉर्मर सीडीएस थे लेट जनरल बिपिन रावत, उनका उसी पे एक्सीडेंट हुआ, और अब आ भी गया ना रिपोर्ट भी आ गई कि वो वेदर खराबी के कारण ही उनका क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। कई बच्चे या हमसे भी मिलते हैं पता नहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बात करते हैं, मूर्खता वाली बात है, पर्सन से कोई मतलब ही नहीं है। देश इंडिया गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ, नॉट बाय पर्सन। व्यक्ति आता रहेगा जाता रहेगा, पोस्ट थोड़ी ना होगा, सीडीएस एक नहीं हजार खड़े होंगे, लाखों खड़े हो जाएंगे, पोस्ट चेंज होती है, व्यक्ति आता जाता रहेगा पोस्ट। कहते हैं किंग डाई लॉन्ग लिव द किंग, याद आया कहां हमने इसको पढ़ाया था, किंग डाई लॉन्ग लिव द किंग, दिस इज अ कॉर्पोरेट थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेशन सोल, उसी को तो बोलते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस में। चलो बात की बात है, हाँ कहां से कहां पहुंच गए, देखो बढ़ाने की हद भी पूरी है, हाँ ना इधर से उधर, अब जल्दी से बता दो आखिरी कर दें।
सेक्शन 242 वाजिब उल अर्ज,
ये तो एकदम में फिक्स क्वेश्चन है, वाजिब उल अर्ज
क्वेश्चन नंबर 1, वाजिब उल अर्ज किस सेक्शन में है, सेक्शन नंबर
242 क्वेश्चन ही नोट कर ली, देखिए पेपर चली केस हाँ 242 वाजिब उल अर्ज, ये कस्टमरी राइट से रिलेटेड होता, गांव की जमीनों का बता दीजिए बस।
एज सब सेक्शन एज सून एज मे बी आफ्टर दिस कोड कम्स इनटू फोर्स, क्वेश्चन नंबर 2 द सब डिविजनल ऑफिसर
वाजिब उल अर्ज
शैल इन द प्रिस्क्राइब मैनर असर्टेन एंड रिकॉर्ड द कस्टम, क्वेश्चन नंबर 3 कस्टम इन ईच विलेज इन रिगार्ड टू ए द राइट्स टू इरिगेशन और राइट ऑफ वे और अदर इजमेंट और बी द राइट टू फिशिंग, ये इसको रट डालिए,
राइट टू वे एंड राइट टू फिशिंग, ये कस्टमरी राइट होता है गांव का, एसडीओ जैसे निस्तार पत्रक बनाता है वैसे ही वाजिब उल अर्ज यानी कस्टमरी राइट्स के बारे में भी उसमें बताते हैं, और बताते हैं कि राइट टू वे रास्ते का अधिकार कौन सा है, पब्लिक रोड कौन सी है, और फिशिंग का राइट पब्लिक फिशिंग राइट जो भी चाहे अपना मछली वगैरह पकड़े वो भी राइट, तो ये दो राइट्स हैं।
इसमें पूछ लेगा कि वाजिब उल अर्ज में क्या नहीं है, राइट टू इरिगेशन, राइट टू वे,
वो ग्रेजिंग पूछता या पास्चर पूछ लेता, लोग उसे लगा देते हैं, अनऑक्युपाइड लैंड का मामला है। वाजिब उल अर्ज में केवल दो ही चीज है ना,
नहीं राइट टू इरिगेशन और राइट ऑफ वे और अदर इजमेंट, और बी है द राइट टू फिशिंग,
इजमेंट्री राइट जितने कस्टमरी इजमेंट, जब भी पूछा जाए कस्टमरी इजमेंट तो ये वाजिबुल अर्ज है, कस्टमरी इजमेंट सेक्शन 18 था ना इजमेंट्री एक्ट में, वही तो है ये वाजिबुल अर्ज और कुछ नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। और चलिए
इन एनी लैंड और वाटर नॉट बिलोंगिंग टू और कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी एंड सच रिकॉर्ड शैल बी नोन एज द वाजिबुल अर्ज ऑफ द विलेज,
मेंस में भी बहुत बार आया है,
बहुत ये मेंस प्री सब में जहां जहां मिल जाए सब जगह कर लीजिए। Subsection 2, the record made in pursuance of subsection 1 shall be published by the sub-divisional officer in such manner as may be prescribed. Subsection 3, any person aggrieved by any entry made in such record may, within 1 year from the date of the publication of such record under subsection 2, institute a suit in a civil court to have such entry cancelled or modified.
Underline कर लीजिए.
Within 1 year.
अगर किसी प्राइवेट भूस्वामी की लैंड में कस्टमरी राइट दिखा दिया गया जो नहीं है तो उसको चैलेंज करना, तो कहाँ चैलेंज करे पब्लिकेशन से? 1 साल के भीतर सिविल कोर्ट. यानी आप लोग का इसीलिए इतना पूछा जाता है सिलेबस में एमपी लैंड लॉ, क्यों? क्योंकि यहाँ सिविल कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन है. तो सिविल कोर्ट में जाइए 1 साल के भीतर और बताइए कि कस्टमरी लैंड नहीं है, ये पब्लिक लैंड नहीं है, ये हमारी प्राइवेट होल्डिंग है और इसको यहाँ से कैंसिल किया जाए. ठीक है.
The record made under subsection 1 shall subject to the decision of the civil court in the suit instituted under subsection 3 be final and conclusive. और subsection 5 कहता है the sub-divisional officer may on the application of any person interested therein or on his own motion modify an entry in insert any new entry in the wajibul arj on any of the following grounds: a) that all the person interested in such entry wish to have it modified; b) that by a decree in a civil suit it has been declared to be erroneous; or c) that being founded on a decree or order of a civil court or on the order of a revenue officer, it is not in accordance with such decree or order; or d) that being so founded, such decree or order has subsequently been varied on appeal, revision or review; or e) that the civil court has by its decree determined by custom existing in the village.
कुल मिला के शुरुआत अगर केवल करना है तो आप लोग को एक शॉर्ट नोट्स अपना बनाइए. ये वाजिबुल अर्ज आपने समझ लिया, ये कस्टमरी इजमेंट की बात करता है और ये एसडीओ प्रिपेयर करेंगे बस, इससे ज्यादा अभी फिलहाल, और 1 साल के भीतर चैलेंज कर सकते हैं. इसके बाद बताइए कोई सेक्शन बचा है?
सेक्शन और है, कल करा के फिर वो स्टार्ट कर देंगे. एकमेंडेशन 628 हो गया ऑलरेडी.
अच्छा, लगभग एंड हो गया. अच्छा, जो लास्ट में था ना, जो आज पढ़ाए हैं बाद में, वाजिबुल अर्ज निस्तार पत्रक और इसके पटेल कोटवार, ये तो चार ऐसा है ना कि ये तो आना ही आना. बहुत इजी वे में आप चाहेंगे तो इसमें से आप लोग जब अपना प्रिलिमिनरी के पेपर शार्ट आउट करिएगा तो मुझे लगता है कि आप इसमें से 20 या 30 सेक्शन, 30-35 सेक्शंस अगर आप इसमें से निकाल लेंगे तो उसी में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा. प्री और मेंस दोनों. सबसे अच्छा मध्य प्रदेश में जो प्री में आता वही क्वेश्चन किस में आ जाएगा, मेंस में तो अलग नहीं होता. इसलिए आप सब अपना देखिए, 2-3 सेक्शन इसमें अंकित सर बता रहे हैं और उसको आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि एम है अपना कि सेलेक्ट हुआ जाए. तो कल से आप सब कौन सी बेरेक लेके आ रहे हैं? ये तो लाएंगे ही लाएंगे, जो बचा इसमें से कराएंगे, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश
एकोमोडेशन
एक्ट ना 1961 है ना,
क्या उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं? किसी के पास है नई बेरेक?
नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ. अरे छोड़ो, अब चेंज हो ना कराओ. एक बच्चा तो शायद बेरेक लेने गया था तो उसने, दुकानदार ने बताया कि वो नई चेंज आ रही है इसलिए हमारे पास नहीं है. हमने कहा अरे जब तक चेंज हो तब तक हम पढ़ा दें, है ना, फिर जब चेंज होगा तो देखा जाएगा. तो कल आप सब इसमें 2-3 सेक्शन बाकी हैं उसको करा के कल एमपी एकोमोडेशन पढ़ाना है, जो 3 दिन बचा है, 2-3 दिन जो भी लगेगा. इस वीक में एमपी एकोमोडेशन एंड कर देंगे, फिर हम लोग आईपीसी 10th ऑफ द जनवरी से स्टार्ट करेंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच. आप लोग भी बेटा लिफ्ट कर सकते हैं.